Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also take calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331-4444 and 2342-1050. These are Delhi numbers, so listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है. आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-10050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी. यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभा.
थैंक यू निखिल. Benchmark indices wipe off previous session losses with Sensex climbing 443 points and Nifty hitting 24,142. In the broader market at BSE, mid-cap and small-cap indices hit fresh record highs during the session. Indian stock market surges by 13.8% in June quarter, highest among the top 10 stock markets. And oil prices rose today due to high summer demand hopes.
घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों ने पिछले सत्र की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए आज नए ऊंचे स्तर पर कारोबार बंद किया. सेंसेक्स में 443 अंक का उछाल और निफ्टी 24,142 अंक पर पहुंचा. विस्तृत बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने सत्र के दौरान नई ऊंचाई को छुआ. भारतीय शेयर बाजार में जून तिमाही के लिए 13.8% की बढ़त दुनिया के 10 शीर्ष शेयर बाजारों में सर्वाधिक. और गर्मियों में उच्च मांग के कारण तेल की कीमतों में बढ़त. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों ने पिछले सत्र की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए आज नए ऊंचे स्तर पर कारोबार बंद किया. सुबह के समय एक सपाट शुरुआत होने के बाद शेयर बाजार में मजबूती आई और पावर, पीएसयू बैंक तथा रियलिटी को छोड़कर सभी सेक्टरों में खरीद के कारण निफ्टी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक आज 443 अंक यानी 0.56% के उछाल के साथ 79,476 अंक पर जाकर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 131 अंक यानी 0.55% ऊपर चढ़कर 24,142 पर पहुंच गया. बीएसई के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी अच्छी खरीदारी देखी गई और बीएसई मिड कैप तथा स्मॉल कैप सूचकांक सत्र के दौरान नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. मिड कैप में आज 1.11% की बढ़त देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.58% का लाभ दर्ज हुआ.
Indian benchmark indices erased previous session losses and ended higher today. After a flat start, the market gained strength, with Nifty inching closer to record levels, led by buying across the sectors barring power, PSU banks and realty. At close, BSE Sensex climbed 443 points or 0.56% and ended at 79,476, while the Nifty was up 131 points or 0.55% to close at 24,142. In the broader market, the mid and small cap segments also saw a stronger buying interest as the BSE mid cap and small cap indices hit fresh record highs during the session. Eventually, the BSE mid cap jumped 1.11% and the small cap index settled with a gain of 1.58%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies registered gains. The top three gainers were Tech Mahindra with 2.94% gain, Bajaj Finance with 2.24% gain, and Ultra Cement with 2.11%. On the other hand, the three major laggards were NTPC with 2.23% loss, SBI with 0.8% loss, while Larsen & Toubro lost 0.61%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were information technology, which gained 1.84%, tech 1.46%, and commodities 1.21%. However, utilities lost 0.64%, realty lost 0.40%, and power sector lost 0.31%. The overall market breadth was positive. Out of 4,146 companies, shares of 2,656 companies advanced, while 1,346 declined, and shares of 144 companies remained unchanged. Yamini, we saw that last week, Friday, we saw that the market closed with a, you know, in red. But today again, we saw that, you know, the market erased all the losses of the previous session and ended in green today. So what are the reasons behind this?
Well, if you look at the market is overall identifying the different triggers that are there, both geopolitically, internationally, as well as nationally. So there are many aspects on which speculations are there. One, there has been a news that the Fed is likely to cut rates, and there's likely to be an increase in the spending, which is likely to have affected the different stocks, which have shown a rise. Also, when we look at the overall expectations towards the budget, they also somewhere or the other frame the expectations of the investor. Further, what has also affected the markets is the consistent inflows of the FIIs that have been affecting the overall market. Again, the sentiment of the investors towards the PMI index, which is 58.6%, is also towards the enthusiastic response towards the market. So these are some factors which are leading the market.
And before we go any further, let me repeat the numbers on which our callers today can call us. That is 2331-4444, 2342-1050. So listeners, if you have any queries regarding any economic, business or stock market news, do call us. We have Yamini Agarwal in studio with us, financial expert who will answer your questions. And do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. And we have the first caller of the day with us. That's Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Thank you, Market Mantra team. Our forex reserves are above $654 billion. Our market is touching all-time high at 80,000, inching towards 80,000 Sensex. Isn't it the right time for government to go for full convertibility? Because this is the sign of an advanced market, developed market. As an investor, we don't have option but to invest in the stock market. Why can't we invest in, you know, dollars, our own money? And can we expect a full convertibility? Because this is there in Russia, this is there in most of the BRICS countries. Even Uzbekistan has full convertibility, but we don't have. Why are we deprived? Why are we deprived of this avenue as an investor? Thank you.
Well, to answer your question, I think I'll give you a little background in terms of the economic growth that we have. We need to observe that our economic growth parameters have been estimating about 8% growth and above 6.5% growth in the future, whereas the world markets are expecting somewhere around 2-3% of the growth, which clearly indicates that your economy is growing at a much faster pace than the required pace that is there in the world markets. Also, the decent inflows of the FIIs are an indicator that there is a heavy inflow in the markets. A lot of times when overheating happens in an economy which is growing, some of the parameters that tend to reflect upon them is one, the capital markets, and the other is inflation. The inflation with the present monetary policy, where the repo rates have been kept static and have not been reduced to ensure that the growth is also there and it is disinflationary, that does provide a lot of stability to the market. But the inflows in the form of hot flows do make an unstable flow. Also, because your economy tends to be a more growth-oriented economy, it does some somewhere or the other, because being overall in the world markets, being a bright spot, tends to attract more investment and more other factors. It needs to stabilize somewhat, and hence full capital account convertibility at this particular given point of time may not be a suitable opportunity for India.
और इस बीच कोलकाता से अतानु साहब हमारे साथ जुड़े हैं. अतानु जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए.
हाँ 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 आई अतानु फ्रॉम कोलकाता. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन. थैंक यू.
See, when we talk about capitalization in terms of the stock market, it usually refers to the number of shares free floating in the market multiplied with the price at which the stock is trading. So that is referred to as market capitalization of any company. Again, it is one of the parameters in which companies usually reflect upon their strength in terms of the investor confidence that investors have. And it is also one of the parameters which recognizes whether a company enters the Sensex, Nifty index or the others and is continuously monitored for its increase or decrease in prices, and also in the large cap, mid cap or the small caps that are there. Again, when we talk about capitalization, market capitalization again is in the stock markets, but capitalization in the corporates is with respect to what the balance sheet carries in terms of your shares and in terms of the other loans that you have taken. So what capital you have invested, that is also known as capitalization. In other words, also the capital structure that you use to fund your businesses और योर फिक्स्ड असेट्स.
यामिनी, आज का अगर हम मार्केट देखें तो आज पीएसयू बैंक ने लोगों को काफी निराश किया है. हालांकि ये एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने लगातार लोगों को प्रॉफिट ही पहुंचाया है, और जब हम चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक में इस तरह गिरावट देखी गई और आईटी शेयर्स का बोलबाला रहा, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे?
देखिए, आईटी शेयर्स तो प्राइमरली इसीलिए इंक्रीज पे रहा है क्योंकि आप देखें तो फेडरल रिजर्व बैंक ने की जो एक्सपेक्टेशन है कि बाय सितंबर इट माइट हैव मतलब ये माना जा रहा है कि सितंबर तक कुछ रेट कट्स आएंगे और स्पेंडिंग बढ़ेगी, और खास तौर पे जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं उसके तहत अगर आप देखें तो यूएस के अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन नजर नहीं आया, ज्यादातर स्टेबल है. तो उसको देखते हुए आईटी क्योंकि एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर है, तो वहां पे सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वो सभी जो हैं बेनिफिशियल होते हैं. जहां तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात है, वहां पे ये जरूरी बात है समझना कि कितना क्रेडिट फ्लो रहा, कितना एनपीए का एस्टिमेशन रहा और कितना उन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर किया है. खास तौर पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इट इज ऑलवेज गुड टू सी एज टू हाउ मच सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव टेकन रादर देन जस्ट आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट्स विच माइट बी अकम्पनीड विद लोन्स विज द अदर्स. ऑल्सो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेक्टर में. सो प्रॉफिट्स के साथ लिक्विडिटी भी एक एसेंशियल एस्पेक्ट होगा.
एंड वी हैव नाउ बीन जॉइंड बाय आवर नेक्स्ट कॉलर. ही इज कुश कुमार पांडे हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम रायगढ़. मिस्टर पांडे, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
जी नमस्कार मैम.
नमस्ते, अपना सवाल पूछिए.
यानी जी को मेरा नमस्कार.
जी नमस्कार.
मेरा सवाल ये है कि कैसे पहले से प्रेडिक्ट करें कि कौन सा सेक्टर आज चढ़ेगा या कौन सा सेक्टर आज घटेगा, इसको थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लें.
जी,
और दूसरा मेरा ये सवाल है कि सजेशन है इंट्राडे के बारे में, कुछ सजेशन दे दीजिएगा.
जी देखिए, पहली बात तो कोई भी प्रिडिक्शन दो तरीके से आती है. एक तो ऑब्जेक्टिव मीन से, जिसके अंदर आप हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं और उसको फिर जो है फोरकास्ट करते हैं किसी भी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक के माध्यम से. दूसरा तरीका होता है एक एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस से, जिसके अंदर बाय एक्सपीरियंस जितना आप ट्रेड कर रहे हैं, जितना आप उस सेक्टर को जानते हैं, उससे आपको पता चलता है. उन दोनों ही सेगमेंट्स में चाहे आप ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करें या आप पर्टिकुलर सब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करें, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए खास तौर पे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या जो खास तौर पे अनाउंसमेंट सेबी जो स्टॉक एक्सचेंजेस में होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. कोई भी कंपनी अपनी प्रॉफिट्स के, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में या कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के बारे में या किसी और स्पेसिफिक चीजों के बारे में जो अनाउंसमेंट्स करती है वो आपको पता चलती है। ऐसे ही अगर सरकार कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स करती है रेगुलेशंस को लेकर के, उनसे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ओवरऑल इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करते हैं, वो भी एक प्रिडिक्शन के माध्यम होते हैं। जहां तक इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक काफी हद तक एक स्पेकुलेटिव मीन्स होता है। ये काफी हद तक इस सिग्नल पर डिपेंड करता है कि क्या अनाउंसमेंट डे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस अनाउंसमेंट में, चाहे वो कंपनी स्पेसिफिक हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, इकोनॉमी स्पेसिफिक हो या उसके स्टेक होल्डर से रिलेटेड हो, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को इफेक्ट करेगी। काफी हद तक टिपर्स का भी इसमें रोल रहता है, क्योंकि वो आपको बता देते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसका भी बेनिफिट मिलता है। पर ज्यादातर मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर एबिलिटी टू गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
यामिनी, यू वर टॉकिंग अबाउट, यू नो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रीजंस फॉर द राइज इन द सेंसेक्स टुडे, यू सेड दैट वन ऑफ द रीजंस वाज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, द पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई फॉर जून हैज कम आउट पॉजिटिव, विच इज 58.3. Earlier it was 57.5 in May. So this particular rise, and you know, this is also the reasons being said that this is because of robust demand leading to the fastest rate of hiring in more than 19 years. So how much of this rise in the PMI is due to also government spend in infra?
Well, there is a lot of rise in terms of the kind of incomes that infrastructure generates, because when we say that infrastructure is going to be built, there's going to be capital investment. So every sector segment like cement, steel, or let's say prices of real estate or land tends to rise. Also, the people who will be employed for building that infrastructure, whether at the company level or at the any other level, they will get hired and they will get paid accordingly. And thereby, there would be an increased income in the market and there would be a multiplier effect to that. There are two factors to that. One is a crowding in effect and one is a crowding out effect. Crowding in effect, where because you place public infrastructure, there are many other people who would invest as private sectors to make the use of the public infrastructure that is available. Crowding out, because you take a lot of capital money from the capital markets, the private players are not left with sufficient capital to make investment. So it somewhere or the other squeezes out the private capital and pushes in the government expenditure that is there. Again, when we talk about infrastructure, it has been an encouraging factor in terms of the overall development. Also, it's important that the sustainability of the infrastructure and the requisite capacities are fully utilized. Right.
कानपुर से अशोक जी हमारे साथ में हैं। अशोक जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए आपका।
जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, लगभग 8-10 साल पहले हो गए, 10 साल के ऊपर हो गए, सहारा के स्टॉक में मैंने पैसा जमा किया था, तो उसके बाद आज तक वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसके भी साल में मतलब मालूम हुआ था कि मिलने लगेगा, लेकिन अगर फिर इस समय आगे 2-3 साल बढ़ गया कि नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपके माध्यम से इसके विभाग तक ये बात में पहुंचाएं कि पैसा जो जमा हुआ है तो कब तक हम लोगों को मिलेगा।
जी देखिए, ये जिस भी आपने स्कीम में पैसा डाला था, आपको पता करना होगा कि उस स्कीम के तहत क्या कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में कितना पैसा इन्वेस्टर्स को मिला है, और उसके लिए आगे का जो उनका जो भी वो काम करना चाहते हैं जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें मिल सके, वो क्या दिशा निर्देश है।
श्रोताओं, हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2331444424, तो 1050, और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। यामिनी जी, अगर हम मार्केट के ट्रेंड को देखें तो मार्केट कुछ ऐसा रहा है कि मंडे को फ्राइडे का मंडे को एक हाई जो लेवल रहा वो टूटा, और फिर फ्राइडे का जो लो लेवल रहा वो जाकर के मंडे को टूटा, एक ट्रेंड सा बना हुआ है आगे बढ़ने का। तकरीबन 1822 अंकों का उछाल हमने देखा है लगभग एक महीने के अंदर, जो कि 7.14% की बढ़त को दर्शाता है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले, तो भारतीय मार्केट की मजबूती को किस तरह से बयां करता है ये?
ये देखिए, जहां तक मार्केट्स में आप कह रहे हैं कि मंडे की क्लोजिंग और जो फ्राइडे की क्लोजिंग है और मंडे की ओपनिंग में डिफरेंस है, उन्हें हम गैप अप या गैप डाउन भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक दिन की क्लोजिंग अगले दिन की ओपनिंग से डिफरेंस में आए, अप आए या डाउन आए, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि क्या स्पेसिफिक ट्रिगर्स रहे हैं उस दौरान जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस में चेंज आया है, या ओवरऑल मोमेंटम में चेंज आया है बायर्स टू सेलर्स या सेलर्स टू बायर। मार्केट्स ओवरऑल काफी इंस्टीट्यूशन ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भारत की ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस जताया है, जिसमें 6.5% नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ बताई है। ये भी देखा गया है कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज में भारत का प्रदर्शन काफी हद तक स्टेबल भी रहा है और बेहतर भी रहा है। कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स रहे हैं ऑन द सोशल फ्रंट, बट अदरवाइज ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स हों, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसीज हों जिनमें डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसीज हों, या आपके ओवरऑल फिस्कल एक्सपेंडिचर्स को लेकर के हो, या दिशा निर्देश हो कि किस तरीके से आगे जो है रिफॉर्म्स का या कोई और प्रोसेस लिया जाए, वो काफी हद तक इनकरेजिंग रहे हैं।
एंड नाउ वी हैव भारत भूषण ऑन लाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर भूषण, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्कार सभी को।
नमस्ते
मैडम, आपसे एफएंडएस से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं क्या?
किस चीज से रिलेटेड?
निफ्टी ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन।
हाँ जी, पूछ सकते हैं
जी। मैडम मुझे ये बताइए, जो मंथली एक्सपायरी जो होती है सेटलमेंट, तो वो फ्यूचर के हिसाब से होती है सेटलमेंट ऑप्शन की, या फिर सपोर्ट के हिसाब से? अगर सपोर्ट के हिसाब से मान लीजिए होती है, तो मान लीजिए 24,000 वाली अभी चल रही है, 24,000 निफ्टी, ठीक है, स्पोर्ट में, तो मैम 24,000 वाली कॉल तो इन द मनी में आ जानी चाहिए ना। तो मैंने ये देखा है पिछली एक्सपायरी में 24,047 पे क्लोज हुई है निफ्टी, बट 24,000 वाली कॉल जीरो हो गई, ये कैसे संभव हुआ? धन्यवाद
जी। देखिए, पहली बात तो फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में अंतर होता है। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो ये एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड डेट पर जो बायर है और सेलर है वो ऑब्लिगेटेड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए। तो जिस भी प्राइस पे आपने जो अपना अंडरलाइंग एसेट है खरीदा है या बेचने की बात कर रहे हैं, वो आपको उस प्राइस पे बेचना होगा या खरीदना होगा। जहां तक ऑप्शन की बात है, यहां पे सेलर के पास ऑप्शन नहीं होता, पर बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो खरीदे या बेचे जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है कॉल या पुट के बेसिस पे। ऐसे ही जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इन दी मनी आउट ऑफ मनी, ये डिपेंड करता है कि जो ऑप्शन आपने खरीदा है और जिस प्राइस पे आप उसको आगे जाकर के एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वो मार्केट प्राइस से कितना ऊपर या नीचे है, और उसी के हिसाब से इन दी मनी आउट दी मनी वो डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो आपने वर्ड यूज किया वो सपोर्ट था। हम ये यूजुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस टेक्निकल इंडिकेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस का मतलब है कि कितना जो है स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर उसको रेजिस्ट कर रही है मूवमेंट को, और सपोर्ट की कितना उसको वो उस लेवल पे सपोर्ट कर रही है।
And or, before we take the next caller with us, that's Vishwajyoti Mitra from, he's calling us. But I would request Mr. Mitra to just stay a little patient while we have a look at the next story. Indian stock indices gave a stellar performance in the June quarter of current fiscal. During the April-June period, Indian stock market capitalization increased by 13.8%, the highest among the top 10 stock markets in the world. Currently, the Indian equity market is the fifth largest stock market in the world, with a market capitalization of $5 trillion. Between April and June, the the market valuation of U.S. markets, the world's largest stock market increased by 2.75% to $56 trillion. The Indian stock market is witnessing a bullish trend from 2023 onwards. Last year, the valuation of India's stock market increased by more than 25%. In June this year, both Sensex and Nifty rallied by nearly 7%. And now let us take the call from Vishwajyoti Mitra, who's calling us from Kolkata. Mr. Mitra, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Good evening.
Good evening. Prashn puchhiye.
Actually, my question is, I am a mutual fund investor and I want to buy funds from Quant Mutual Fund. But this is the only company, I think, perhaps this is the only company, they don't have any website so that I can purchase funds directly. I am a direct purchaser of funds. So please let me know why this company is being allowed without website, and I have to buy through the broker or any other. Please explain. Thank you.
जी, आप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं और आपके जो बैंक के अकाउंट्स हैं उसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. वो भी स्पेसिफाइड फंड्स होते हैं आप जिनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आप स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से भी कर सकते हैं. ऐसे ही म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप उनके माध्यम से भी कर सकते हैं. ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो है स्पेसिफिक फर्म्स के पार्ट होते हैं और आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो फर्म है जो उसे इशू कर रही है उसकी वेबसाइट पर जाकर के उसकी डिटेल्स देख सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज करता हुआ अमरीकी डॉलर के मुकाबले 83.44 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.21% की गिरावट के साथ 105.64 पर था. और एशिया यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया. हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के सपाट बंद हुआ. चीन शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.92% के लाभ में रहा. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.23% की वृद्धि देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम 0.17% की तेजी के साथ बंद हुआ. और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.12% की बढ़त दर्ज हुई. यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. फ्रांस का कैक 1.55% ऊपर था और लंदन का फुटसी 100 0.38% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं जर्मनी का डेक्स 0.39% की वृद्धि में चल रहा था.
Moving on, India has initiated an anti-dumping probe pertaining to glass fiber imports from China, Thailand and Bahrain following a complaint from a domestic player. If confirmed, anti-dumping duties can be imposed. The Directorate General of Trade Remedies, DGTR, initiated the anti-dumping investigation based on the evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product. The DGTR is the Commerce Ministry's investigation arm and can recommend imposing anti-dumping duties on imports. However, the final decision is taken by the Finance Ministry. Anti-dumping probes are conducted to find out if domestic industries have been hurt because of large surge in cheap imports. These duties are imposed under the multilateral regime of the World Trade Organization. The duty is for ensuring fair trading practices and creating a level playing field for domestic producers.
और श्रोताओं को बता दें, तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रूपये की कटौती की है. 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य आज से प्रभावी हो गया है. मूल्य में कमी के कारण दिल्ली में इस गैस सिलेंडर की खुदरा बिक्री का मूल्य अब 1,646 रूपये हो गया है.
Moving on to commodities, oil prices rose today, helped by expected peak summer consumption and OPEC plus production cuts. Brent crude was up by 0.75% to $85.64 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude rose 0.71% to $82.12 per barrel when reports last came in.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना और चांदी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सोने का वायदा मूल्य अगस्त 2024 के लिए 0.39% की तेजी के साथ 71,860 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. वहीं जुलाई 2024 अनुबंध के लिए चांदी 0.50% के उछाल के साथ 87,599 रूपये प्रति किलोग्राम के के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यामिनी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क इंडिसेस वाइप अप प्रीवियस सेशन लॉस, विद सेंसेक्स क्लाइंबिंग 443 पॉइंट्स एंड निफ्टी हिटिंग 24,142। इंडियन स्टॉक मार्केट सर्जेस बाय 13.8% इन जून क्वार्टर, हाईएस्ट अमंग द टॉप स्टॉक मार्केट्स। एंड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे ड्यू टू हाई समर डिमांड होप्स। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ। फॉर नाउ, गुड बाय। Market Sector.